الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شروع کرتے ہیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بات کے سننے کا ایک بار پھر موقع دیا اور سنانے کا ہم دعا کریں گے کہ آج کے اس چھوٹے سے وقت میں ہم کوئی ایسی بات ضرور سیکھ کر جائیں کہ جو ہماری زندگی کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت لمحہ بن جائے جیسا کہ آپ سب جانتے بھی ہیں کہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے اور آج کے فلائر سے بھی آپ نے یہی پیغام لیا ہوگا کہ محرم الحرام کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا برکات ہیں تھوڑی سی بات اس پہ کروں گی کیونکہ الحمدللہ میرے گمان کے مطابق آپ میں سے اکثر لوگ یہ سب کچھ جانتے ہیں صرف ایک تذکیر کی خاطر ایک بار کہنے سے دوبارہ بھی کہہ دی جائے تو کوئی بری بات نہیں ہوتی ادروائز یہ ہے کہ ہر سال اس موضوع پہ بات ہوتی ہے اور یقین کریں کل کی بات لگ رہی ہے کہ ہم نے محرم ہی کے اندر یعنی لاسٹ ایئر محرم کو ہم نے एक सीरीज़ शुरू की थी इस उम्मीद के साथ कि हर महीने का एक दर्स स्कूल में लोग आकर सुनेंगे, और उसका नाम क्या रखा था? मुहर्रम और आज का मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हैरान होती हूँ, पूरा महीन साल गुजर गया और मुहर्रम और आज का मुसलमान और इसके बाद सफ़र और आज का मुसलमान से होते हुए आज हम फिर मुहर्रम पे आ गए। गोया कि इस पूरे अरसे के दौरान मेरी और आपकी ज़िंदगी का एक और साल चला गया। असल जो चीज़ मुझे आपको इन गुज़रते हुए माहों साल से याद रखने की है वो क्या है कि हमारी ज़िंदगी का एक साल और चला गया। तो मुहर्रम का महीना अल्लाह ताला के हुक्म से बहुत सारी अहमियतों का हामिल है। मैं आज 7 डिफरेंट पॉइंट्स बताऊंगी आपको कि मुहर्रम के महीने के साथ क्या 7 चीज़ें हैं अहादीस की रोशनी में। लेकिन फिर बाद में हम ज़्यादा बात जिस पे करेंगे वो करेंगे कि मुहर्रम का पैगाम क्या है, क्योंकि असल तो बात यह है कि चीज़ों के अंदर तो हम खो ही जाते हैं। और यहाँ एक छोटे से मुगालते का भी एक बात का एक जो मुगालता है, मुगालते से मुराद मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसका भी आपके सामने तذکرہ कर दूंगी कि बचपन से लेकर शौरी सफ़र शुरू होने तक मुझे ये पता था कि मुहर्रम गम का महीना है, मुहर्रम शोक का महीना है, मुहर्रम में शादियाँ नहीं करते, मुहर्रम में शादी हॉल ऐसे ही मिल जाते हैं, मुहर्रम में हलीम पकती है, मुहर्रम में सबीलें लगती हैं। हमारा वो छोटा सा जहन जो गलियों में गुजरते फिरते या जहाँ से भी हमने देखा ये कुछ था, और ऐसे लगता था कि नौसुबिल्ला ये एक मनहूस महीना है, गम का महीना है। और कुछ और थोड़ा सा जहन पे ज़ोर दूँ तो फिर ये भी जहन में आ जाता है कि मुहर्रम में टीवी की नशरियात बिल्कुल बदल जाती थी, काले रंग के कपड़े, सोक म्यूज़िक बंद हो जाता था और बहुत कम फन और ऐसे एंटरटेनमेंट थी। मोस्ट ऑफ द टाइम मीडिया पे तकरीरें, बातें, और मुझे आज भी एक नाम याद है, तालिब जौहरी थे या क्या था नाम उनके साथ, जौहरी आता था, वो टीवी पे आकर बहुत पुरजोर और रोने वाली तकरीरें करते थे। बस मुझे इतना पता है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि हम मुसलमान घरों में पैदा होने वाले और अपना ताल्लुक़ अल्लाह के हुक्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ने वाले, मुहर्रम की वो फजीलतें, वो चीज़ें कि जो अब कुरान और सुन्नत को खोल कर पढ़ने से जो समझ आई, उससे नाशना क्यों थे? शायद उसकी वजह यह है कि हम इल्म से दूर थे। तो पहली बात, मुहर्रम क्या है? मुहर्रम का लफ्ज़ी माना जो है ये हरामीम से है, सेक्रेट इंग्लिश में कह लें, हराम किया गया, ममनू, मुकद्दस, अजमत वाला। जो भी चीज़ बहुत अजमत वाली होती है ना, हम उसको हराम कर देते हैं किसी पे। सादी सी मिसाल दे दूं, क्योंकि ये लफ्ज़ भी नहीं था समझ आता, ना ये लफ्ज़ समझ आता था ना बैतुल हराम समझ आता था कभी, ये हराम क्यों है तो अल्लाह का घर, तो बैतुल हराम क्यों है? आपका भी ये शुबा था? मैं अपने शुबे बताती रहती हूँ, आप बताते नहीं हैं। लेकिन मैं अक्सर सोचती थी लफ्ज़ हराम तो बुरा होता है, तो फिर मुहर्रम हराम किया हुआ क्या मतलब, ये हराम है? लेकिन आप इसको एक छोटी सी मिसाल से समझिए। घरों का ड्राइंग रूम खूब सजा संवरा, बच्चों का दाखिला हराम है। घर का खूबसूरत फर्नीचर, खूबसूरत डिनर सेट, शौहर के लिए खाना खाना उसमें हराम है। आप समझ आ गया? जो चीज़ जितनी कीमती और आला और अरफा और उसकी उसकी अहमियत ज़्यादा होती है, जो महंगी होती है ना, वो हम अमूमन ख़रीदने वालों पे हराम कर देते हैं कि आपको नहीं नसीब होगा इसमें खाने को, वो बच्चों के ससुराल आएंगे तो खाएंगे। लेकिन बात समझ आ गई? अब चीज़ों पे ना आए वापस आ जाए। जो चीज़ जितनी कीमती होती है ना, हम बाज़ दफ़ा उसको छूने को भी हराम समझ लेते हैं, लॉकरों में रख देते हैं। वो चीज़ें हमारे लिए आम ज़िंदगी में रोज़मर्रा नहीं होती। इसके बरक्स जो बड़ी आम चीज़ें होती हैं वो हर वक्त इधर उधर घूमती हैं। सोने के जेवरात जो हैं वो हम पे हराम है, क्योंकि वो लॉकर्स की जीनत है। हाँ, छोटी मोटी ज्वेलरी हम पहन लेते हैं जो कि सस्ती होती है, ऐसे ही है ना। तो इस लफ्ज़ से आप ज़रा सोचिए, लफ्ज़ मुहर्रम में क्या कुछ छुपा हुआ है? कीमती चीज़ है, कोई कोई बड़ी अहम बात है। अल्लाह ने इसकी को बहुत ही ज़्यादा फजीलत रखी हुई है। और ये भी याद रखिए कि साल के 12 महीने हैं, अरबी में कह लीजिए, उर्दू में कह लीजिए, पंजाबी में कह लीजिए, दुनिया की हर लैंग्वेज में मज़हब जो हैं या महीने जो हैं वो 4 ही हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 36 में आप हर साल ये बात सुनते हैं, बल्कि मैंने पिछली पूरी सीरीज़ में हर लेक्चर से पहले मेरा हल यही आयत पढ़ी कि इन नद्दत शहूर इंदल्लाह हिस्ना अशर शहरा, कि महीनों की गिनती अल्लाह की किताब में 12 ही है। कब से? फ़ी किताबिल्लाही यौम खलक समावाती वलर्द, जिस दिन से ज़मीनों आसमान बनाए गए, पैदा किए गए, उस दिन से यही है। मिन हा अरबतुन हुरुम, इसमें से 4 हुरुम है। تو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینے کا نام محرم ہے. اب دیکھیں اس جملے میں کتنی دفعہ لفظ حرامیما ہے. حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح مجھے آپ کو پیدا کیا, میری آپ کی مادی جسمانی ضروریات کو پورا کیا, اسی طرح اس نے ہماری روحانی ضروریات کو بھی پورا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت میں پیدا کیا, بھیجا اور وہاں سب کچھ ہوا جو آپ جانتے ہیں, تو اس کے فوراً بعد جب ایک شیطان کی کہہ لیجئے کہ ابلیس کے دھوکے میں آ کر آدم علیہ السلام نے جنت کا پھل چکھا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر آدم اور حوا کو اس دنیا میں بھیج دیا. کل نہ بھی تو منہا جمیا. اگر آپ آدم اور ابلیس کا قصہ شروع میں پڑھ لیں پہلے پارے میں ہی, تو اس میں ایک جملہ آپ کو ملے گا, باد کم لی بادن ادو, تم میں سے بعض بعض کا دشمن ہوگا. یہاں سے سمجھیے, پھر آپ کو حرمت والے مہینے کی اور یہ ساری باتیں بہت اچھی سمجھ آئیں گی. اس دنیا کی بنیاد یا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے میں جو طریقہ کار, جو میتھڈولوجی استعمال کی ہے, وہ کیا ہے کہ جہاں آپ ہوں گے بالکل قریب ہی آپ کا مخالف بھی ہوگا. پہلے نہیں ہوگا تو بعد میں پیدا ہو جائے گا. فطرت کا اصول ہے. آپ اپنے سیاسی نظام میں دیکھتے ہیں حزب اقتدار اور حزب اختلاف, ادھر فرشتے ادھر شیطان, ہر چیز اپوزٹ کے ساتھ ہے نا. اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں آدم کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی بھیج دیا, اور جو اندیشہ فرشتوں نے ظاہر کیا تھا ذرا سا اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسجدوا لآدم وإذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں نے کیا کہا؟ قال وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اتنی بات پہ رک جائیں. فرشتوں کو دو اندیشے تھے, فساد پھیلائے گا آدم اور فسق کرے گا. ٹھیک ہے, یہاں سے سمجھیے, دنیا میں شر انگیز عناصر ہمیشہ رہے. دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اعلیٰ فطرت دے کر بھیجا, لیکن ابلیس نے چونکہ پہلے ہی دن قسم کھا لی تھی کہ میں تو ضرور ہی آدم کے بچوں کو بہکاؤں گا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے, یعنی آپ کہہ لیجئے 1/3 آف دی ہول ایئر کو محرم کے حرام کر دیا. کس طرح سے حرام کیا؟ ذیقات, ذیلحج اور محرم. اگر اس وقت آپ دیکھیں تو ہم مسلسل تیسرے حرام کیے ہوئے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں سے ہی ذرا سا محرم کی فضائل اور محرم کی خوبیوں کو, فیوز کو دیکھ لیں. سب سے پہلی خوبی محرم کے مہینے کی کیا ہے؟ کہ یہ نئے سال کا پہلا مہینہ ہے. یہاں سے ہیپی نیو ایئر کہہ لیجئے یا نیا سال جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ اسلام کا مزاج دیکھیں, اور اگر آپ کے پاس کاغذ قلم ہو نا تو بیچ کے نام بھی لکھیں. پیچھے آخری لاسٹ کیا گزرا؟ ذیلحج. اس سے پیچھے کیا گزرا؟ ذیلقعد. ادھر کیا ہے؟ محرم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے سال کی انتہا اور تمہارے سال کی کا آغاز حرمت والے مہینوں سے ہو. اور یہ تین مہینے مسلسل حرمت والے کیوں قرار دیے گئے؟ کیونکہ عرب لوگ ان مہینوں میں حج کے لیے احرام باندھ کے گھروں سے نکلتے تھے, اور ظاہر ہے کہ ذیلقعدہ میں نکلتے تھے, پھر ذیلحج میں حج کے رسومات اور ادا کرتے, اور گھر جاتے جاتے محرم ہوتا. جیسے اگر آپ کو بھی 25-30 سال پہلے اپنی نانی دادی کسی کا کوئی عمل یاد ہوگا, تو لوگ بحری جہاز پہ حج کرنے جاتے تھے, 3-3 مہینے لگ جاتے تھے. ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے ان تین مہینوں کو حرمت اللہ کر دیا. کیوں؟ نہ لوٹ, نہ مار, نہ کچھ کچھ. عرب لوگوں میں اتنی جہالت ہو چکی تھی کہ وہ قافلوں کو لوٹتے تھے, ہر ایک کے مال کو اپنا مال سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں سے ان 3 مسلسل مہینوں کو قید حرام, ایسے حرام قرار دے دیا کہ کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ بات نہ کر سکے. اب ذرا سا دیکھیے, پہلی بات کہ اگر حرمت اللہ یہ مہینہ گزرا, عرب لوگ لڑاکے اور کہہ لیجئے بائی پروفیشن لٹیرے تھے, بائی پروفیشن ڈاکو تھے. اس کو ذرا سا آگے ہو, ایک چیئر آگے آ جائیے آپ, ایک چیئر ادھر بن رہی ہے, آ جائیں, ایک ادھر بھی ہے پیچھے, آپ ادھر آ جائیے پلیز. آپ لوگ توجہ رکھیں, آپ دیکھیے کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ بائی پروفیشن وہ چور تھے, اس کے باوجود جب حرمت والا مہینہ آتا تھا تو وہ کچھ نہیں کرتے تھے. تو محرم کی دوسری خوبی یہ حرمت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں باپ کا قاتل بھی ان کے سامنے آ جاتا تھا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے. سورۃ توبہ جنہوں نے پڑھی ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تو کر لیتے تھے کہ آگے پیچھے کر لیں, انما نسیو زیادتم فی الکفر, یہ کر لیتے تھے کہ اس سال حرمت کا مہینہ بعد میں آ جائے گا, بعد اللہ پہلے آ جائے گا, لڑ لیں. لیکن اتنی ضرورت نہیں تھی کہ محرم کو حرمت والا مہینہ سمجھنے کے باوجود بھی لڑیں. چلیے ذرا سے رکیں یہاں پر, میں پھر دہرا لیتے ہیں. کس کس کو اس بات کا احساس تھا, ہے ابھی, یا باہر جا کے پوچھئے لوگوں سے کہ یہ حرمت کا مہینہ چل رہا ہے. اس سے پچھلا بھی حرمت کا تھا, اس سے پچھلا بھی حرمت کا تھا. سیاسی لڑائیاں بند, مذہبی لڑائیاں ختم, اکنامکس کی جنگیں ختم, تاجر اور اجیر کے جھگڑے ختم, کرایہ دار مالک مکان کا جھگڑا نہیں ہو سکتا. کیوں بھائی, تم سے بات کروں گا حرمت کے مہینے کے گزرنے کے بعد. سمجھ آ رہی ہے؟ آج ہم مسلمان حضرت ابراہیم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلق جوڑنے والے ہیں, اس کے باوجود ہمیں تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ نہ لڑنے کا مہینہ ہے. خاندانی لڑائیاں دیکھیے, شوہر بیوی بی کے جھگڑے دیکھیے, ڈائیورس کے کیسز دیکھیے, اختلافات دیکھیے, جو کچھ بھی ہے. آج ہم اتنا زیادہ اس چیز کی سینس سے دور ہو گئے ہیں کہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. اور دنیا میں اس وقت انہیں 3 ماہ کے اندر ایک نیا اسٹیشن کھلا لڑائی کا, آپ سب کو پتا کہ جہاں گاجر مولی کی طرح لوگ کاٹے جا رہے ہیں. آپ دشمن کو کیوں برا کہتے ہیں؟ کیا مسلمان کو خود پتہ کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یاد رکھیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. تو محرم کا مہینہ مسلسل تیسرا حرمت والا مہینہ ہے. اگر آج ہم مسلمانوں نے یہ علم کم از کم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو دیا ہوتا تو آج اخباروں میں سرخیاں چھپتی, پتہ نہیں کیا بات ہے. یہ جب سے ذوالقعدہ شروع ہوا ہے پاکستان کے اخباروں میں کوئی قتل کی خبر ہی نہیں, کوئی چوری نہیں, کوئی ڈکیتی نہیں. سعودیہ میں کچھ نہیں, قطر میں کچھ نہیں, اور یو اے پورے میں کچھ نہیں, اور ملیشیا میں کچھ نہیں, انڈونیشیا میں کچھ نہیں. میں صرف مسلمان ملکوں کے نام لے رہی ہوں. اگر ہم مسلمان آج صرف خود اپنے دین پہ عمل کر رہے ہوتے تو دنیا کو ہم پیس اور امن کا پیغام دے کے آتے. اتنی بڑی جرات سمجھی جاتی تھی اس مہینے میں لڑنا. غلط فہمی سے ایک جنگ ہو گئی تھی, کفار دیت لینے آ گئے, فتنہ پھیلا دیا کہ دیکھو دیکھو حرمت کے مہینے کا پاس نہیں کیا. تو یہاں اپنے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں, لا علمی عمل کو پیچھے, انسان کے عمل سے دور کرنے والی چیز اس کی لا علمی ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں ہے. چلیں آج پتہ لگ گیا نا, تقریباً 3 تاریخ ہے آج میرا خیال ہے محرم کی, 2 ہو گئی یا 3, مختلف جگہوں پہ لوگ سن رہے ہیں, ہر ایک کے حساب سے آج نیت کیجیے. دیکھیے جو چیز آپ اپنے عمل سے سکھا سکتے ہیں نا, وہ بول کے نہیں سکھا سکتے. جو آپ کے عمل کو دیکھ کے نہیں سمجھتا, وہ پھر بول کے بھی نہیں سیکھے گا. آج سے پورے اگلے جو بھی 26 27 28 دن ہے نا, اس کے بارے نیت کریں. گھر جائیں, بچوں کے ساتھ بیٹھیں, 2 چھوٹے بچے لڑ رہے ہیں, بچوں کی تو عادت ہے لڑنا. نہیں بیٹا, بھائی سے نہیں لڑتے. کیوں ماما؟ حرمت کا مہینہ. بہن چھین رہی ہے کوئی چیز بھائی دوسری بہن سے, نہیں بیٹا ایسا نہیں کرتے. شوہر کسی بات پہ غصے میں, نہیں میاں صاحب جو آپ کہتے ہیں میں کر دیتی ہوں, لیکن اس وقت غصہ نہ کرے, جھگڑا نہیں ہوگا. کیا آپ جتنی ساتھی بیٹھے ہیں ہم سب کے گھروں میں اگر اس ایک مہینے میں یہ ایکٹیویٹی ہو جائے تو ماحول بدلے گا؟ آپ کے خاندان, سنا ہے تم نے اس کی طلاق, ادھر جھگڑا, ادھر آؤ بتاؤں کیا. بھئی یہ ذرا ٹھہر جو, تھوڑے سے صبر کر لو, محرم گزر جائے پھر بات کریں گے. اپنے عمل سے مجھے آپ کو یہ سب کچھ دینا ہے. اور جس چیز کی تعظیم اور حرمت کفار مکہ کرتے تھے, آج کا مسلمان اس چیز کی نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اگر حرمت کے مہینے کی بات کر کے آگے چلیں تو تیسری چیز, ابھی تک میں نے 2 چیزیں بتائی ہیں, پہلی کو میں نے ابھی ٹچ کیا کیونکہ اینڈ پہ اسی پہ لاؤں گی آپ کو. تیسری چیز جو حرمت کے مہینے کی ہے وہ کیا ہے, کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کا آپ کے پسندیدہ مہینہ تھا. روایت میرے پاس موجود ہے, آپ ریفرنس لینا چاہیں لے لیں. صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رمضان کے بعد جس شوق اور محبت کے ساتھ محرم کے مہینے میں روزے رکھتے دیکھا, خاص طور پہ اس کے شروع کے جو دن تھے 9 اور 10 اور 10 یا 11, اتنا ہم نے کبھی کہیں نہیں دیکھا. آپ کو محرم کا مہینہ پسند تھا, अच्छा, आप कहते हैं हमें तो पसंद नहीं है, कैसे पसंद था, क्या था? क्योंकि उनकी पसंद नापसंद का पता चलता था इबादत के तरीकों से। अल्लाह के नबी को ये महीना पसंद था, बस हदीस में मौजूद है। आप उस पे पसंद को किस रंग में लेते हैं, इसके बारे में अगर आप एक चीज़ सर्च में डालें ना कि क्या कुछ हुआ। अभी एंड पे इंशाल्लाह अगर मुमकिन हुआ तो आपको कुछ स्लाइड्स के थ्रू भी कुछ चीज़ें दिखाते हैं कि मुहर्रम के महीने में कितने अहम वाक़ियात हुए। कोई ना कोई ख़ास बात ज़रूर है इस महीने में। फिर अगली बात आप देखिए कि मुहर्रम का महीना गुनाहों की माफ़ी का महीना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 9 या 10, पहले आप गए जब मदीना में तो आपने देखा कि मदीना के लोकल जो लोग थे वो 10 तारीख का रोज़ा रखते थे। आपने पूछा कि तुम क्यों रखते हो, ज्यूस थे उधर इर्द गिर्द वो भी रखते थे, तो उन्होंने कहा कि इस दिन अल्लाह ताला ने मूसा और उनके साथियों को निजात दी थी, यानी फिरौन डूब गया तो मूसा निकल आए। ये तो हदीस से ही मिल गई कि 10 मुहर्रम को फिरौन डूबा था और मूसा और बनी इसराइल को निजात मिली थी। तो हम उस निजात की खुशी में ये काम करते हैं। तो नबी सल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम से तो तुम्हारी निस्बत हम ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं, अगले साल हम भी ये रोज़ा रखेंगे, लेकिन यहूद की मुशाबहत से बचते हुए हम क्या करेंगे, या तो इसके साथ 9 का रखेंगे या 11 का। ये अलग बात है कि अल्लाह के नबी को उसके बाद मोहलत नहीं मिली। तो क्या पता चला कि इस महीने में आपने फरमाया कि ये एक रोज़ा इंसान के गुनाहों की माफ़ी बन जाता है। आप देखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला बहाने बनाकर मुझे आपको माफ़ करना चाहता है। मैं अक्सर जब इन महीनों पे पहुंचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि रमज़ान आया, रमज़ान गुजारा मैंने आपने, अब क्या है। हम कहते थे कि अच्छा रमज़ान में नेकियां कर लें कर लें, कुछ कोशिशें हुई, कुछ नेकियां की, कुछ इरादे किए, सब कुछ नहीं कर सके। अब जब रमज़ान गया तो हमें बहुत ही मलाल हुआ इस चीज़ का कि पता नहीं क्या बन गया हमारे साथ। अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, शवाल के 6 रोज़े रख लो, तुम्हारे किए किराए पे कुछ कमी आ रही है तो कोई बात नहीं, 6 रख लो और पिछलों को भी जोड़ के मैं तुम्हें पूरे साल के रोज़ों का अजर दे दूंगा। वो भी हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर थोड़ी सी गफलत आने लगी, ज़िलक़ादा का महीना हमने शादियों और पार्टियों में गुजार दिया, दिल पे फिर ज़रा सा एक वो परछामा सा आने लगता है। तो अल्लाह सुबहान तआला ने वल फज्र वल लयाल नस्र व शफ़ वल वत्र कहकर हमारे ऊपर 10 दिन पेश कर दिए, कौन से, ज़िलहज के, और कहा कि इसके अंदर ही बातें कर लो। अभी पिछले महीने ही हम कुछ इस किस्म की इबादत करके आए, फिर कमी बेशी हो रही है। अल्लाह सुबहान तआला अब देखिएगा कि मुहर्रम के दिन ला रहा है, ये दिन मेरी आपकी नेकियों के दिन है। अगर आप देखें तो मुहर्रम के महीने को इतनी अहमियत देने की जो वजूहात हैं उसका इंशाल्लाह तआला एंड पे थोड़ा सा मैं खुलासा करने की कोशिश करूँगी, ताकि आप इस चीज़ को समझें कि अल्लाह के इस कानून में कोई चीज़ भी बेमकसद नहीं है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई बात मौजूद होती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है 2755 नंबर की, अफ़सलुस सियामी बादर रमदान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। तो इधर से आपको अब 5वीं फजीलत मिल रही है कि मुहर्रम को अल्लाह ने अपना महीना कहा, और ये सही रिवायत है मुस्लिम की, जाके देखिए 2755 नंबर की। तो छठी बात क्या है कि ये अल्लाह का महीना है। अब सारे ही अल्लाह के, कौन सा नहीं है, नहीं, इसको अरबी ज़बान में कहते हैं इजाफत बराए तशरीफ़। जैसे बैतुल्ला, अल्लाह का घर, तो क्या आपके मेरे घर अल्लाह के नहीं है, लिल्लाह ही माफ़ी समावाती व माफ़ी अर्थ, तो ये इज़्ज़त होती है। इसी तरह आप देखिए कि जैसे रूहुल्लाह, और इसी तरह से कुछ और चीज़ें हैं जिसमें अल्लाह ताला अपनी तरफ निस्बत रख लेते हैं। तो लिहाजा इस महीने में को अल्लाह ताला ने अपना महीना कहा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इस महीने की एक और खूबी क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी उम्मे कुलसूम की शादी हज़रत, बोलिए, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से की, और वो भी 3 हिजरी थी, 3 मुहर्रम। ये बात सुनते वक्त थोड़ा सा फिर अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें। हमारे कल्चर में मुहर्रम में शादी करने को बदशगुनी कहते हैं, घर नहीं बसता। और नबी सल्लम क्या फरमाते हैं कि मेरी अगर एक नहीं, मेरी और भी बेटियां होती तो वो भी मैं उस्मान को देता। मतलब यह कि नबी सल्लम की बेटी इतना खुश थी उस्मान के साथ। अगर आपकी बेटी खुश ना होती, दे के पछताते, वो ले के पछताते, ये करते वो करते, तो आप बताइए कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के बारे में ऐसी बात कहते? तो याद रखिए, अगर आज आपके इर्द गिर्द कहीं ये बात है कि मुहर्रम में शादी नहीं करनी, तो आप कर लीजिए किसी की। अगर अगले महीने करनी है, कुछ ना कुछ कर दीजिए। ये दिल में ख्याल और वहम डालने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं इस महीने में कुछ नहीं करूँगी। करिए, ये आम दिनों की तरह है। अब रह गई बात कि जो 50 हिजरी नबी सल्लम के दुनिया से जाने के तकरीबन 40 साल बाद एक वाक़या हुआ, जिसको लोग वाक़या करबला कहते हैं, उसमें जो कत्लो गारत गरी हुई या कुछ कुछ शख्सियात शहीद हुई, उसको बुनियाद बनाकर इस खूबसूरत महीने को मकरूह कहना, मनहूस कहना, क्या ये अक़ल की बात है? और ये भी याद रखिए कि मुहर्रम की एक और ख़ूबी क्या है कि यहाँ से हिजरी कैलेंडर शुरू हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जो हिजरत थी ना मक्का से मदीना, वो कह लीजिए कि रमज़ान से शुरू होते होते ज़िलहज पे पूरी हुई थी। पहला चांद मदीना में जाने के बाद जो मुसलमानों ने देखा था, वो मुहर्रम का चांद था। और ये सब कुछ कब हुआ था? 17 हिजरी में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब दुनिया से गए? 10 हिजरी में। 2 साल अबू बकर के भी गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। उमर फारूक का 5वां साल था। अब सवाल पैदा हो रहा था कि मुसलमानों का कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए, तो ऐसा करते हैं कि एक इस्लामिक कैलेंडर शुरू करते हैं। या ऐसे जैसे आप यहाँ स्कूल में काम करते हैं, तो आप कहते हैं हम अपने स्कूल का कैलेंडर बनाएं, कि वहाँ से शुरू करें, क्या करें। किसी ने कहा कि नबी सल्लम की पैदाइश से। ज़रा सा गौर से सुनिएगा जुमला। लोगों ने कहा कि देखिए, नबी सल्लम के वजूद से ही तो ये दीन शुरू था, हुआ मक्का में, एक रिवाइवल चले हुई, जो भी है। तो ऐसा करते हैं कि नबी सल्लम जिस दिन पैदा हुए, चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 12 रबीउल अव्वल या 9 रबीउल अव्वल, कुछ भी उस पर करते हैं। साहबा ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? उस दिन तो वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे, वो तो यतीम थे, यानी महरूमियाँ थी। कहा अच्छा, चलो फिर इसको छोड़ देते हैं। दूसरी राय क्या आई कि हम ऐसा करते हैं कि जब पहली वही उतरी, इक़्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलक अल इंसान मिन अलक, आपकी उम्र मुबारक उस वक्त 40 साल की थी, यहाँ से शुरू कर लें कैलेंडर। लोगों ने कहा ना, वो क्यों? उसके बाद तो मुसलमानों के जुल्म व सितम की दास्तानें खुल जाएंगी, तो क्या मुस्लिम कैलेंडर गम के साथ शुरू होगा? ये भी नहीं। फिर क्या किया जाए? तो अबू मूसा अल-अशअरी एक सहाबी थे, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ऐसा करते हैं, सॉरी हज़रत उमर से कहा कि फिर हम हिजरत के सफ़र से देखते हैं, क्योंकि असल में इस्लाम का गलबा तो यहीं से शुरू हुआ था। शुरू के जो 13 साल थे, वो तो बस जुल्म सितम सहने के थे, तो लिहाजा हज़रत अबू मूसा ने तवज्जो दिलाई थी, हज़रत उमर ने सहाबा से मशवरा किया था, और हज़रत अली के मशवरे से फिर ये मुहर्रम का महीना यहाँ से इस्लामी कैलेंडर शुरू हुआ था। और इस बात को जहन में रखिएगा, हज़रत उस्मान का फिर जब उसमें दौर आया, तो फिर तो बिल्कुल ये चीज़ असल में आ गई। अब आप और मैं कहते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, नया साल शुरू हुआ। क्या गुज़रा पिछले साल में? एक छोटा सा इशू जो आजकल बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप के थ्रू और फेसबुक पे भी आता होगा, जो मीडियम यूज़ करते हैं लोग, नए साल की मुबारक देते हैं, एक दुआ भी पेश करते हैं, अब तक भी आते होंगे। सवाल मैं ख़ुद बनाती हूँ और उसका जवाब भी खुद ही दे दूँ, शायद किसी को फ़ायदा हो जाए इस बात से। क्या नया साल समझते हुए यकम मुहर्रम को लोगों को नए साल की मुबारक या हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहिए? है ये सवाल जहनों में कि नहीं? हैप्पी न्यू ईयर। और ये सवाल पता है किस जहन से उठता है? वो लोग जिनको आप यकम जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहने देते, और वो जो हाय हुर्रा करते हैं और जो लाइटें चलाते बजाते हैं, और उस वक्त जो कुछ भी हालात होते हैं आप सब जानते हैं। हम कहते हैं ना बेटा, मुसलमान ऐसे नहीं मनाते, मुसलमान बीचेस पे नहीं जाते, और वो इस तरह के काम नहीं करते। अब वो बच्चे फिर कहते हैं हम कब करें? तो फिर उसका एक अल्टरनेट क्या निकलता है? अच्छा भाई, ये तो अब इस्लामी हुआ। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये चीज़ पिछले 4-5 साल पहले भी नहीं थी, हमने अपनी आँखों से देखा है इस चीज़ को शुरू होते हुए। इसके बारे में क्या हुक्म है? सीधी सी बात है, सहाबा तो ऐसा नहीं करते थे। ये सवाल पूछा गया इसी दौर की शख्सियात में से, मेरा हाल है कि उसाइमीन जो थे, या फिर वही जो नाम मेरे जहन से भी चला गया, जिनका कुछ साल पहले इंतकाल हुआ है, हरम मक्का में से जिन मुफ्ती आज़म थे, उनसे ये सवाल किया गया था। मेरा गालिब गुमान यही है, नहीं बल्कि हज़रत तैमिया, किसी भी कम एंड पे इंशाल्लाह आपको चेक करके भी बता देती हूँ, कि अगर कोई आपको नए साल की मुबारक दे तो क्या करें? तो उन्होंने कहा अगर कोई आपको मुबारक दे देता है ना, तो आप उसको अच्छे तरीके से जवाब दे दें, फतवे ना दें ये हराम है ये बुरा चीज़ है, लेकिन ख़ुद से अगर आपको कहने का मौका हो तो अवॉइड करें। क्यों? ये सोच कर के साहब ऐसा नहीं करते थे। आप कहेंगे ये क्या छोटी छोटी बात है, हर चीज़ के ऊपर छोटी छोटी बातों पे साहबा नहीं करते थे, अल्लाह के नबी नहीं करते थे। तो याद रखिए कि दीन तो फिर सारा पीछे से चला हुआ है ना। आप इसको कस्टम बना लें, रस्म बना लें, लेकिन आप ये चीज़ ज़रा जहन में रखिएगा कि जब भी नए साल का चांद आता है, जैसे चले अभी आया 2 दिन पहले, क्या ये आपको मुझे एक और 0 या 6 था तो 7, 7 था तो 8 लगता हुआ हमारी उम्र में नहीं दिखाता? क्या ये गुज़रते हुए माहों साल आपको मुझे अपनी ज़िंदगी के हाथों से फिसलने का सबक नहीं दे रहे? और एक तरफ तो देखिए कि हम जिंदा हैं, सोचिए ज़रा पिछले यकम से लेकर इस यकम के बीच में आपके मेरे ख़ानदान के कितने लोग दुनिया से गए, हमारे इस शहर में कितनी मौतें हुई, कितने लोग दुनिया से गए, हम अभी ज़िंदा हैं। अगर आप और मैं ये काम करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मुहर्रम मुझे आपको सिखाता क्या है, तो अगर इस बात को सुने, अब ये सारे पॉइंट्स में से कुछ चीज़ें मैं आपको 1, 2, 3 करके बोल देती हूँ कि फिर मुहर्रम का पैगाम क्या है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ मुहर्रम। अगर आप ये कहते हैं ना कि ये नए साल का पहला महीना, पहला यानी न्यू ईयर है, मान लेते हैं कोई बुरी बात नहीं, तो क्या कीजिए, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़ा खोलिए। देखिए हम में से बहुत सारे बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमने ख़ुद से बहुत सारी नियतें भी की होती हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है हम वो कर नहीं पाते। कुछ अरसे के बाद हमारी ज़िंदगी में फिर कोई उतार चढ़ाव आता है, हम जो काम कर रहे होते हैं उसको छोड़ देते हैं। तो अगर आपने मैंने कुछ करना है, इस महीने का पैगाम लेना है ख़ुद से, तो वो क्या है कि हम अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करें। और यकीन करें अल्लाह सुब्हान तआला आपको मुझे कैसे मौके देता है। अगर हमारी ज़िंदगी एक ही डगर पे चल रही होती ना, जैसे आप और मैं शुरू से चल रहे थे, बस वही ज़िंदगी होती, बस हम छोटे थे तो छोटे ही रहते, या आप कह लीजिए कि अल्लाह सुब्हान तआला हम सबको एक एज का पैदा करता और उसके बाद हम बस वैसे ही रहते, तो हम कह सकते थे कि हमारे पास मौका ही नहीं है जी, अब जो होना था वो हो गया, जो अल्लाह ने देना था दे दिया, जो मिलना था वो मिल गया। हाँ, अल्लाह ताला आपको मुझे ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल से गुजार कर एक नया चांस देता है। क्या जो कल तक नहीं किया वो आज कर लो। आज यहाँ बैठकर ख़ुद से पूछिए, जितनी भी आपकी उम्र है, कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप 25 के हैं कि 30 के हैं कि 35 के हैं कि 40 के हैं, अब जितने के भी हैं कोई बड़ी बात नहीं है, ये देखिए कि आपने काम कितने बड़े बड़े किए हैं, आपने किया क्या है इसमें, और फिर आप तकाबुल में रखें। चलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अपने लिए एक क्राइटेरियन बनाते हैं, 40 साल की उम्र तक अखलाक बड़ा खूबसूरत था, मुआशरे में बड़े खूबसूरत सादिक और अमीन के लकब थे, ज़ईफ़ों का बोझ उठाते थे, और जो कुछ भी आप सुनते हैं आपको सारा याद है। ठीक है, आपके मेरे ज़िंदगी के 40 साल गुजर गए बिलफर्ज़, जिनके नहीं गुजरे हैं वो सोच लें कि अभी भी पीछे मौका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्मी सफ़र कब शुरू हुआ? इक़्रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी ख़लक़ से ना, उम्र मुबारक क्या थी? 40 साल। तो 40 साल वालों के लिए ये एक पॉइंट है कि आप भी किसी स्कूल में दाखिला ले लें। हम कहते हैं अब पढ़ना है, टांगे तो कब्र में, कोई कब्र में नहीं है, बाकी शौक़ है हमारे दिल में, लेकिन याद रखिए कि अगर आपको मुझे अल्लाह ने सेहत और ज़िंदगी दी हुई है ना, तो इसके लिए आपको मुझे अभी से इस चीज़ की कोशिश करनी है, क्या कि अल्लाह तू मुझे ज़ाया होने से बचा। कितने लोग हैं आप देखिए कि इस महीने के आगाज़ में खुशी, मुबारक, सलामत के जज्बात, ये फितरी बात है, लेकिन हक ये इस महीने का कि हम नए उमंगे, नए आरजुएं, नई चीज़ों से काम करें। आप देखिए जब आप नई कॉपी लेते हैं ना, आप कहते हैं इसको मैंने गंदा नहीं करना, इसको बड़े अच्छे तरह से इस्तेमाल करना है, और किताब वो तो मैंने स्कूल लानी ही नहीं क्योंकि पुरानी हो जाएगी, इस सोफ़े पर बैठना ही नहीं क्योंकि ये गंदा हो जाएगा, कुछ ऐसे भी होते हैं। लेकिन आप मानते हैं कि जूं ही हम कोई नई चीज़ शुरू करते हैं हमारे दिल में एक उमंग आती है, एक आरजू आती है। आज यहाँ बैठे बैठे ख़ुद से तो पूछिए ज़रा, जो मैं थी पिछले साल मैंने वही रहना, जैसी थी मैं वैसी ही रहना, क्या मैं अपने आप को बदल नहीं सकती? और याद रखिए कि हमारी सारी बातें नहीं बुरी होती, कोई एक बुरी होती है, लेकिन वो हमारी सारी अच्छी बातों के ऊपर पानी डाल देती है। मेरी बीसियाँ होंगी, आपकी भी एक आधी होगी। आपके हर बच्चे को आप अपने ज़रा नज़रों में रख के देखें, सारी खूबियाँ हैं, लेकिन एक है वो लड़ाका है, छोटी छोटी सुबह रोक के ही जाना है उसने, माँ को माँ के डांट खा के जानी है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे ना, उसमें और बहुत सारी खूबियाँ होंगी। इसी तरह बाकी रिश्तों में भी देख लें, आप अपने अंदर का वो चोर पकड़ें कि जो आपकी मेरी तरक्की के रास्ते में रुकावट है, और आप फील करेंगे कि जब आप अपने आप को चेंज करने पे आ जाएंगे ना, तो अल्लाह ताला फिर आपके लिए आसानियाँ करेगा। दूसरा पैगाम मुहर्रम के नाते से ही, पहला क्या समझ आया कि वक्त को गनीमत जानो। इस पर बहुत सारे लेक्चर हैं, पूरी सीरीज़ मौजूद है, और बल्कि मैंने देखा है कि ऐप के ऊपर भी है टाइम मैनेजमेंट। जब मौका मिले कोई छोटी सी बात पढ़ लें, आप इंग्लिश उर्दू लेक्चर बीसियाँ यूट्यूब पे सुन सकते हैं, जिसमें टाइम मैनेजमेंट या लाइफ मैनेजमेंट पे आपको चीज़ें मिलेंगी। लेकिन डोंट गिव अप, ये ज़िंदगी आपको मुझे एक बार मिली है जो अमल के लिए है, दूसरी ज़िंदगी जो है वो बस एक बात ही होगी जो होगी। फिर दूसरी बात है हुरमत का महीना है, इस पे मेरा आपका पैगाम क्या है सोचिए। यहाँ बैठ के इस वक्त चंद सेकंड में चुप भी कर सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। किसके साथ झगड़ा है, दिल मैला है, ताना देने को दिल करता है, किसकी गिबत की थी या करनी है जाकर, किसी के साथ भी कोई दिल आज़ारी वाली कैफियत है, तो ख़ुद को यहाँ बैठ कर कहें कम अज़ कम 28 दिन सब्र करूँगी। मैंने इस महीने में मैंने नहीं करनी बुराई किसी से, और अगर कोई आपसे पहुँचे आप तक कोई ताने की सूरत में, इल्ज़ाम की सूरत में, तो क्या कहना है, अगले महीने बात करेंगे। हदीस में आता है ना कि जब कोई रोज़े में हो तो रोज़ा रखे, रोज़ेदार से कोई झगड़ना जाए है तो क्या कहो, इन्नी साइमन, अरबी में आप औरत हैं तो कहते इन्नी साइमतुन, तो साइमा को तो फिर हमेशा ही झगड़े से दूर रहना है, उसको तो किसी से भी नहीं करना, कितनी साइमा इधर एक तो मेरे साथ ही आई है, हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हमारे नाम जो होते हैं ना, वो हम अपने नाम सुनते सुनते इतने आदि हो चुके होते हैं कि उस पर गौर भी नहीं करते। तो कम अज़ कम अपने दिल को हर मनफी जज्बे से पाक कीजिए। यकीन कीजिए ये ज़िंदगी का रोग है, ये जो अखलाकी बुराइयाँ और जो ख़राबियाँ ना, ये मेरी आपकी ज़िंदगी का एसेंस निचोड़ लेती हैं। ज़िंदगी में खूबसूरती लाना चाहते हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि आप जन्नत वाले काम करें या आप जन्नत में रहें, तो आपको इस दुनिया में ही दूसरों से बेनियाज होकर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की ज़रूरत है। मैंने इस पूरे महीने में कोई अखलाकी बुराई नहीं करनी, जिसमें गीबत भी है, जिसमें ताना भी, और आगाज़ होता है उसका किससे, बदगुमानी से। पहला बदगुमानी, फिर तजस्सुस, फिर गीबत, और फिर तफरकेबाजी। सूरत हुजरात की तरतीब ही बोल रही हूँ, आप सबको याद होगी। अब तो अपने आप को हमेशा ये कहा करें, क्या अल्लाह ने मेरा ये टेस्ट बनाया कि मैं हमेशा बुराई चुनूं? देखिए कमरे में एक छोटी वो पड़ी हुई है, डस्टबिन है ना, इधर एक डस्टबिन रखी हुई है, हो सकता है कि पीछे एक कमरा है, वहाँ किचन है, वहाँ बहुत खूबसूरत डिशेस भी हों, हो सकता है कि आप कोई खाना डालें तो आप डिश ढूंढ के लाएं। हमारे घर के बर्तनों में अमूमन क्या चीज़ें मिलती हैं, खाना डलता है, अच्छी चीज़ें होती हैं ना। इस ट्रैश कैन का मकसद क्या है, इसका नसीब क्या है, बल्कि ये कह लें गंद, छिलके, बुरादा, बदबू देती हुई चीज़ें, अपने आप से पूछें क्या मेरा दिल ट्रैश कैन है, क्या मैं ट्रैश कैन की तरह हर गंदी चीज़, हर बुरे जज्बे को अपने दिल में जगह दूंगी? एक सेकंड दिल में आएगा, ये याद रखिए, मैं और आप इंसान हैं, इंसानों में रहते हैं, हमें अपने बच्चों पे गुस्सा आता है, औरों पे क्या आएगा, हमें अपने करीबियों पे आता है, हमें अपने दोस्तों पे, सब पे आता है। 3 सेकंड से ज़्यादा उसको जगह ना दें, आप देखेंगे कि इसके बाद क्या होगा, खुद बहुत आपके दिल से वो जज्बे निकल जाएंगे। रात को सोने से पहले मैंने हर बंदे को माफ़ कर देना, क्योंकि नहीं पता कि कल उठना है कि नहीं उठना। कितने ऐसे लोग हैं रात को सोए और फिर सुबह में नहीं उठे। अभी ये पिछले वीक मैं फ्रांस में थी, तो मुझे किसी के बारे में बताया कि रात को ठीक सोए थे, सुबह फिर उठे नहीं, फिर कभी भी नहीं उठे। कितने इरादे, कितने प्लान, कितना कुछ, और ना सिर्फ ये कि खुद बल्कि अपने बच्चों को। मैं कहती हूँ ये मासूम बच्चे हैं ना, इनको अभी से फूल बना दें, मोती बना दें, खुशबू बना दें, ये दुनिया में मनफी जज्बात से पाक हो। इनके सामने बैठ के दादी की बुराइयाँ, फुफ्फो की बुराइयाँ, और हम बच्चों से नहीं करते गिरते, ये भी याद रखें। हम खुद कर रहे होते हैं, ये मासूम सुन रहे होते हैं। फ़ोन कॉल्स ये हमारी सुनते हैं, स्काइप की चैटिंग ये सुनते हैं, अम्मी अब्बू की कन्वर्सेशंस ये सुनते हैं, और जो भी हमारी कॉन्स्परेसिस चल रही होती हैं ख़ानदानी तौर पे, ये सुन रहे होते हैं। तो हमने अपने आप को इखलाकी तौर पे मजबूत करना है। हुरमत जान और माल और इज्जत इतनी बड़ी चीज़ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, ज़िलहज का महीना, अरफे का दिन, नौ ज़िलहज, और देखिए नबी सल्लम का वाहिद हज, और आपने लोगों से क्या कहा, आज कौन सा दिन, कौन सा महीना, कौन सी जगह। साहबा कुछ नहीं बोले, कहा अल्लाह जानता है, आप जानते। फिर आपने क्या कहा कि लोगों, तुम्हारी जानें, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर ऐसे ही हराम है जैसे ये दिन, ये जगह, ये महीना। आज मैं और आप हरम और मक्का की चीज़ें, तस्वीरें देख दा के रोएं, लेकिन हम दूसरों की जान तो हम नहीं लेते, ये अलग बात है कि लोगों की जान सुखाते हैं, लोगों की जान निकालते हैं। मतलब अगर इसको सेंस में लेके, कत्ल तो नहीं करते, और अल्लाह ना करे कि इस तरह का अखलाकी बिगाड़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम महज़ब लोग हैं, हम माल भी नहीं खाते, ये अलग बात है। कुछ रसूमात के नाम पे कहते हैं लो अब हमें खिलाओ, हम खाएंगे पिएंगे, लेकिन चले उसको भी बहुत ज़्यादा ना लेकर चलें। लेकिन जिस चीज़ के बारे में बहुत कम कोशिश होती है, वो अगले की इज्जत। अंदर से एक चोर बोल रहा था नहीं, इसकी इज्जत खराब होगी तो मेरी बनेगी। दूसरों के ऊपर खड़े होकर खुद को, हमारे कद लंबे होने होते हैं। और यकीन करके देख लीजिए कि जितना ज़्यादा आपके दिल में इन चीज़ों का ख्याल आएगा, आप खुद देखेंगे। और ख़ास तौर पे वक्त ज़ाया ना करें, यानी इसमें एक पैगाम ये भी है। पिछला साल गुजर गया, मैं अगर मुझे दे कोई कॉपी पेन तो मैं भी लिखूं और आपसे भी कहूं आप भी लिखें, पिछले साल से आज तक क्या नई चीज़ की, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया नेकी का उस मंसूबा। देखिए हर एक के फ़र्क है, किसी ने एक नया बच्चा पैदा कर लिया, वो भी एक प्रोजेक्ट है। किस किस के घर बाय द वे इस साल में बच्चा पैदा हुआ है, उन्होंने कहा कि जो काम कर रहे हैं खूब कर रहे हैं। वो किसी ने मुझे बताया कि एक मर्द ब्रदर्स थे, उसकी उनकी शादी नहीं हुई, शादी हुई तो बच्चे नहीं थे ना, तो वो ख़ुद को तो जो हो, लेकिन माँ बहन सास को बहुत होता है, जो भी है। खैर चार पाँच साल के इंतज़ार के बाद दोनों ने अपने बेटे की दूसरी जगह शादी कर दी। अब पहली खातून पड़ी अच्छी, सब कुछ मिलने वाली करने वाली, दूसरी जो थी वो अपने हाल में मगन थी, पर उसने एक काम किया, हर साल एक बच्चा पैदा किया, और अब उस ब्रदर के 13 बच्चे हैं। तो वो क्या कहते हैं उनके घर वाले, कहते जेड़े काम ले लियांदा सी लगी हुई है। लेकिन आप इसको छोटा प्रोजेक्ट ना समझे, एक बच्चे को पेट में रखना, फिर निकालना, फिर उसको पालना, और अगर आप इसको उम्मत मुस्लिमा का एक फ़र्द कहते हैं तो ये बच्चे एक अमानत है। याद रखिए ये बच्चे आपकी मेरी पास अल्लाह की अमानत है, और इन अमानतों का वक्त ज़ाया करने के लिए आज मैं दुख के साथ कहूँगी, जो चीज़ आपके मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नागुज़ीर हो गई है वो क्या है, कि हम इन बच्चों को मशीनों के हवाले करके, गैजेट्स के हवाले करके छोड़ते हैं। अपना और अपने बच्चों का वक्त नोट करें। एक आर्टिकल है मेरे पास, अगर इजाज़त दें तो पढ़ के सुनाओ। आप में से किस किस के छोटे बच्चे हैं वो हाथ खड़ा करें, अगर नहीं है फिर नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, आप अपने बच्चों को कार्टून दिखाते हैं, देखते हैं बच्चे कार्टून्स के इफ़ेक्ट्स पे, कि ये वाक्या है, अगर आप सुन कहें तो मैं सुना दूँ, सुनाओ। और फिर इसको आपने किस तनाजर में लेना है, कि ये मुहर्रम मुझे आपको ये कहता है कि टाइम नॉट टू किल। लोग कहते हैं वक्त काट रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं। ये टॉपिक का नाम है कि इन वालदैन के लिए जो बच्चों का कार्टून देखना बुराई नहीं समझते। कार्टून कार्टून कार्टून, पंजाब यूनिवर्सिटी की तालिबा फराह खालिद अपने नोट्स लेते दूसरे कमरे में जाती है, दरवाज़ा खोलती और धक से रह जाती है, कदम वहीं घट जाते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नन्ही बच्ची फातिमा अयूब हीटर के आगे खुशू खुदू से बैठी है, آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں خاص طور پہ وہ ہیٹرز ہوتے ہیں جس میں آگ نظر آتی ہے نا، یہاں تو موسٹلی یہ آئل والے ہوتے ہیں نا، تو شاید میں آپ اس کو سمجھ نہ سکیں، تو وہ آگ نکلتی ہے ہیٹر میں تو گرم ہوتا ہے، تو یہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ جی، ہیٹر کے آگے خشوع خضوع سے بیٹھی ہے، دونوں ہاتھوں سے رام رام کر رہی ہے، جی ہاں وہ آگ کی پوجا کر رہی ہے۔ فاطمہ، یعنی غصے سے ماں چلائی، فاطمہ کی آواز گہرے کنویں سے برآمد ہوئی، یہ فرح کی اوپر کی منزل میں رہنے والے مالک مکان کی بیٹی ہے، وہ ہولے سے پیچھے دیکھتی ہے، یہ کیا کر رہی ہو؟ آپی، وہ بھی تو ایسا ہی کرتا ہے نا، ہاں وہ فلاں کارٹونز میں فلاں بھی تو ایسا ہی کرتا ہے، اور اس کا دل چاہتا ہے لوگوں کو چیخ چیخ کر کہہ دے کہ یا بچوں کو مسلمان بنا لیں یا بچوں کو کارٹونز دکھا لیں۔ ہمارے ہاں بہت نامی گرامی تعلیمی ادارے ہیں، دیندار لوگ بھی ان کو پریفر کرتے ہیں کہ ان کا ماحول نسبتاً بہتر ہے۔ یہاں کا ایک واقعہ ہے، ایک ننی بچی رات کو سونے سے قبل کارٹون ہیرو کو خدائی مقام دے رہی ہے اور اپنے بابا سے اس کی شان بیان کر رہی ہے، انتہائی ملحدانہ نظریہ الحاد، یعنی اسلام چھوڑنا، الحاد کہتے ہیں اسلام چھوڑ کے دوسری طرف جھک جانا، الحاد کی بدبو میں لپٹا جملہ اس معصوم بچی کی زبان سے وارد ہوتا ہے اور بابا کے تن بدن میں آگ لگا دیتا ہے۔ بابا دینی مزاج کے حامل ہیں، ان کی رات کروٹیں بدلتے گزرتی ہے۔ اگلے دن فوراً اس تعلیمی ادارے کا رخ کرتے ہیں، وہاں جا کر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں باقاعدہ کارٹون کلاس ہوتی ہے۔ اسی کا اثر ہے کہ بچی اپنے بنانے والے کریم رب کو نہیں جانتی، اپنے کارٹونی ہیرو کو خدا مانتی ہے، وہ سب کچھ کر لیتا ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا دکھائی دیتا ہے۔ میں نے چند دن قبل کلاس میں اس حوالے سے بات کی، ایک خاتون کہنے لگی، کبھی ذہن میں ہی نہ آیا تھا کہ بچوں کو اس سے بھی روکنا چاہیے، یہ بھی کوئی روکنے ٹوکنے والی بات ہے، کیا ہر کارٹون میں میوزک نہیں ہوتا؟ کیا وہ ننھے معصوموں کے شفاف دلوں میں نفاق نہیں بھرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنا، یعنی گانا وغیرہ، نفاق اگاتا ہے؟ کیا کارٹونز میں بے حیائی اور عدم لباسی کا ایک سیلاب نہیں ہوتا؟ کیا وہ ایسے حیا باختہ مناظر نہیں ہوتے جو ایک شریف انسان کی بسات سے باہر ہوتے ہیں؟ کیا یہ بچوں کو بے حیائی کا عادی نہیں بنا رہے؟ کہ اکثر بچے کہتے ہیں کارٹونز تو گندے نہیں ہوتے، دھیان دلایا جائے تو کہتے ہیں ہاں ہاں فلاں گندے نہیں، اور وہ فلاں بھی بہت خراب ہوتے ہیں، کیا کارٹونز میں بدتمیزی، ماؤں سے چیخو پکار کی ادائیں نہیں سکھائی جاتی؟ کیا بچے اونچی بولنا، دھاڑ دھاڑ کر بولنا ایک فیشن نہیں سمجھتے کہ ان کے ہیرو بھی ایسے ہی ہوتے ہیں؟ کیا یہ کارٹونز بچوں سے ان کے اصلی ہیرو نہیں چھین لیتے؟ وہ بچوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ننھے صحابہ، وہ ننھے کمانڈوز امت محمدی کے یہ ہیرو ہیں، اور کارٹونز کبھی ڈوریمون کو ہیرو بنائیں گے، کبھی شنچن کو، اب پتہ نہیں میں صحیح بھی پڑھ رہی ہوں کہ نہیں، کچھ کریکٹرز ہیں یہ، کیا ڈوریمون جادو کا سبق نہیں سکھاتے؟ کیا جادو کفر نہیں؟ کیا کارٹونز ہیرو، ہیرو کسی کارٹون کا نام ہے، کو خدا بنانے پر تلے نظر نہیں آتے؟ کیا کارٹونز غیر حقیقت پسندانہ رویہ نہیں سکھاتے؟ کیا شن چین یہ نہیں سکھلاتا کہ ماں سے بدتمیزی کرو، ناراض رہو اس بات پر کہ وہ تمہیں ڈھیروں ڈھیر اور من چاہی شاپنگ نہیں کرواتی یا کروا سکتی؟ اسلام کی پاک باز بیٹیوں کو کارٹونز یہ نہیں سکھلاتے کہ شن چین کی ماں کی مانند ہو تو ایسی نہ رہو، اس کی ہمسائی جو بے حیائی کا مرقع ہے، اس کی تلقین پر شن چین کی ماں کی مانند ہمسائی کو مان لو، ویسے ہی حیا کے جنازے نکال لو کہ کوئی برائی کی تلقین کرے تو فوراً مان جاؤ۔ کیا کارٹونز ڈانس نہیں سکھاتے؟ کیا کارٹونز بچوں کی معصومیت سلب نہیں کر لیتے کہ وہ اپنی ماں، خالہ، پھوپھی کی جانب اشارہ کر کے ہنستے ہیں اور ان کی توجہ ان چیزوں پر ہوتی ہے جن کو کارٹون اجاگر کرتے ہیں، اور پھر جب سر سے پانی گزر جاتا ہے تب ہم کہتے ہیں ہائے آج کل کے بچے، توبہ، ہائے یہ اتنا بدتمیز کیوں ہو گیا، اس نے تو جینا دھوبر کر دیا، ہائے ایسے کالے کرتوت، ہائے ہم نے تو ایسا سوچا بھی نہ تھا، ہائے اس نے ماں باپ کی عزت کا بھرم بھی نہ رکھا، پھر وقت ہائے بائے ہی رہ جاتی ہیں، آہیں ہی دلوں کے پردے تار تار کرتی ہیں، مگر پھر پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اب اس بات میں ظاہر ہے کہ کچھ کردار تھے، میں اتنا نہیں جانتی ان کو، لیکن یہ میں جانتی ہوں کہ یہ وقت قاضیاں ہیں۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک قول معروف ہے کہ دوسرے بچے کھیل رہے تھے تو ان کو بھی بلایا، क्या खेलें? तो इनमें से किसी एक ने ये कहा था कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में खेलने के लिए नहीं भेजा। देखिए, इंसानी जहन की नश्व नुमा बचपन में हो जाती है। कहते हैं कि 3 साल का बच्चा, उसने जो अखज़ करना होता है ना, वो कर चुका होता है। यानी उसने अच्छे असरात लेने ले चुके हैं, बुरे जरासीम लेने ले चुके हैं। क्या मैं और आप अपने बच्चों के वक्त के लिए क्यूरियस हैं? देखिए, वो माएँ जो खुद अपने वक्त का ख्याल रखती हैं, वो अपने बच्चों के वक्त का भी ख्याल रखती हैं। अभी ये मासूम है, आप अपने आप पर कहते हैं हाय अब मैं बड़ी हो गई, पता नहीं अब मेरे पास कितने साल हैं। लेकिन आपका मासूम बच्चा, अभी तो उस बेचारे की ज़िंदगी शुरू हो रही है। क्या आप मुझे सच बताइए, कभी आपका दिल नहीं करता कि आप छोटी हो जाएं, नए सिरे से कुछ बने? मेरा तो हर वक्त दिल करता है। फिर पीछे चलो, फिर करो, लेकिन मैं और आप पीछे नहीं जा सकते। हाँ, पीछे जाने का एक कुदरती तरीका हमारे बच्चे हैं। तो मुहर्रम मुझे आपको ये सिखाता है, पिछला साल गुजर गया सो गुजर गया, मट्टी पाओ, आगे वाले साल को याद करो। फिर एक काम और कर सकते हैं आप और मैं मुहर्रम के नाते से, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को पुरअसर और करें। आज घर जाके बैठे, वीकेंड भी आ रहा है आगे 2 दिन है छुट्टी के, जहाँ भी वक्त निकालेंगे निकल आएगा, अपना पूरे साल का प्लानर बनाए। मसलन आप कहेंगे अच्छा पूरा साल क्या पकाना है, कितनी दफ़ा पाकिस्तान जाना है और कितने कपड़े सिलाने हैं या कुछ और। देखिए, ये भी ज़िंदगी है। आप में से कौन है बाय द वे जो पूरे साल का खाने का प्लानर बना सकती है? नहीं बना सकते। जो सबसे आसान है, हम वो कौम है जो प्लान करना ही नहीं जानते। आपको पता है कि जहाज़ों में जो खाना सर्व किया होता है, पूरे पूरे साल के इनके मेन्यू सेट होते हैं। आप कहेंगे लोग उनको क्या पता है, हालांकि 200-300 बंदे का खाना होता है एक वक्त में। हम ज़िंदगी को प्लान करें, मैं अपनी ज़िंदगी को प्लान करूँ, अपने ऊपर लीजिए, मत किसी को कहें। कोई आपसे पूछे एक साल के बाद अब कहाँ होंगी, तो आपने कहना इतने ही होना है, और कितने होना है। पिछले साल कहाँ थी? इधर ही थी। ये तो कोई मज़े की बात नहीं है, मैंने इधर ही क्यों रहना है, मैं क्यों ना आगे बढ़ूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी को ज़ाया नहीं होने देना। देखिए, पिछले महीने मेरे हाल 15 दिन से ऊपर ही हो गया होगा, हमारी एक बहन के शौहर की डेथ हुई ना अचानक, वो भी ट्रामा में है। वो कहती मुझे यकीन ही नहीं आता, ये मेरे ईमान से बड़ी आजमाइश है। सोचा ही नहीं था कभी, ख्याल भी नहीं आया, कोई शौहर ने कोई पासवर्ड कोई चीज़ नहीं कभी शेयर की, क्योंकि कभी सर दर्द भी नहीं हुआ, ना शुगर ना कोई उल्टी सीधी चीज़ें जो कुछ होती हैं। बंदे को गुमान तभी पड़ता है ना जब खिंच पड़ती है, कहते बेगम ये रख लो, अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर याद मुश्किल ना हो। वो कहती है कभी वहमो गुमान के किसी साए में भी नहीं आया था कि ये बंदा मुझे छोड़ जाएगा, चले गए ना। हम कितना दूसरों पर नज़रें रखते हैं, आप नहीं होंगे तो ये होगा, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। याद रखिए, ये हर दिन मुझे आपको कह रहा है कुछ कर जो, अपनी ज़िंदगी को कुछ ले लो, कर लो। ये घड़ी टिक टिक करके आपके मेरी ज़िंदगी के हर दिन को कम कर रही है। क्यों नहीं सीखा मैंने कुरान अभी तक, क्यों नहीं तर्जुमा मुझे अभी याद, क्यों मेरी तजवीद ठीक नहीं, क्यों मुझे अभी तक ग्रामर की बेसिक्स भी नहीं आती, क्यों मुझे हदीस में से सिर्फ बुखारी भी नहीं पता, मैं दुनिया से चली जाऊँगी। देखिए, ये तो 3-4 मैंने इल्मी बातें कर दी हैं। हम दुनिया की चीज़ों में कितनी कोशिशें करते हैं, कितनी मेहनतें करते हैं और पा लेते हैं। एक बिल्कुल कोरी चिट्टी अनपढ़ खातून आती है इस मुल्क में, गुजारे की नॉर्वेजियन सीख लेती है कि नहीं? कितने लोग हैं जिनको एक लफ्ज़ इंग्लिश का नहीं पढ़ना आता, लेकिन वो ड्राइविंग करके टेस्ट दे के पास हो जाते हैं, ड्राइविंग कर रहे होते हैं। बात समझे, क्या मुश्किल है इस दुनिया में। और आज के दौर में तो अल्लाह ने ऐसे ऐसे मीडियाज़ कर दिए मेरे आपके सामने कि यकीन कीजिए कि अगर आप और मैं एक नए अज़्म और जज्बे के साथ काम करें। आपके मैंने इस साल में कंप्यूटर सीखना है, मैंने सीखना है, क्या मुश्किल है। हंडिया पकानी, आग भी है, रोटी पकानी, चूल्हे पे हाथ भी जाता है, हाथ ज़्यादा ख़तरनाक काम है, लेकिन चूँकि वो करते हैं तो हमें मुश्किल नहीं लगता। और यकीन करें, मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती बात ना करूं तो बेहतर है, आप जिस वक्त इस तरह जिस तरह बैठे हुए ना इस वक्त जिस माहौल में, ये दरो दीवार जब भी मैं आती हूँ किसी भी स्कूल में आऊँ तो मेरे जहन में ये क्वेश्चन मार्क होता है कि देखिए पूरी दुनिया में स्कूल्स हैं ना, पाकिस्तान के भी स्कूल्स हैं और अमेरिका के भी हैं और जहाँ के भी हैं, मेरा ख्याल है किसी भी मुल्क की बहुत बड़ी एक इकोनॉमी जो है वो स्टडीज़ पे जाती है। ये जिन कुर्सियों पे आज आप बैठे हुए हैं, ये ऑडिटोरियम होगा, ये हो सकता है फंक्शनली यूज़ करते होंगे या कोई क्लास होती होगी। हाँ, क्या करते हैं कुछ पता है? कोर्सेज करते होंगे, अच्छी चीज़ें सिखाते होंगे। मैं नहीं कहती कि बुरी चीज़, मैं नहीं कहती इधर वो लोगों को कोई बेकार फजूल चीज़ सिखाएंगे, लेकिन आज इन कुर्सियों पे बैठकर आपने जो बात सीखी है, जो आपने बात सुनी है, ऐसी बात कभी इन कुर्सियों पे बैठने वालों ने नहीं सुनी होगी, क्योंकि बल हुआ कलाम अल्लाह। ये माहौल हर एक को मुयस्सर नहीं है, ये चीज़ें आपको मिली हुई हैं, साथियों का साथ, एक माहौल का बनना, साथियों का तड़पना, आपको बुलाना, आपके लिए आपकी खातर ख्वाह इज्जत करना, ये हर जगह नहीं है। आप इसकी कदर कीजिए। मेरा दिल करता है कि मैं एक मुहिम बनाकर इस बात पे निकलूं आप सारे शहर वालों के पास कि फबियाई हदीस इम्बाद हो यो मिनोन, इसके बाद फिर किस चीज़ का इंतज़ार है। हमारी ज़िंदगी में एक नया बेबी आया है, हमारे बेबीज हमारी क्लासेस होती हैं, हमारे स्टेशंस होते हैं। आपके साथ दिल की बात इसलिए शेयर करती हूँ कि ये भी मेरा ही काम है, मैं बग़ैर वजह के नहीं कर रही आपसे ये बात। जब एक चीज़ नहीं होती ना, तो हम बहुत कदर बहुत मांगते हैं। मतलब बच्ची 20 साल 22 साल की होगी, रिश्ता नहीं हुआ, फिक्र लग जाती है माँ बाप को, चले ये नहीं वो नहीं वो नहीं ये, होते होते किस्सा मुख्तसर क्या हुआ, मंगनी हो गई 25 साल में, पाँव ज़मीन पर नहीं ठहरते, बस समझाते हैं बजाते हैं बड़ा अच्छा। जिस दिन शादी हो गई उस दिन शादी को बड़ी नेमत ही नहीं लगती। वही मर्द जिसके लिए दुआएं की थी कि अल्लाह मिल जाए ऐसा ही कोई भी बेटी को, उसके आगे इंसान फिर केयरलेस हो जाता है। शादी के शुरू में हम अपने शौहर की बात जैसे मानते हैं कि आज भी वैसे ही मानते हैं, इल्ला माशाल्लाह, नेमत है ना, मिल गई अब अपनी, अब जाना किधर है, फंस गए हैं। अब आप देखिए नेमत आती है ना, शुरू में बहुत कदर होती है, बच्चा नहीं है बच्चा नहीं है बच्चा नहीं है, फिर बच्चा आ गया तो बेचारे को मासूम को डांटते भी हैं झिगड़ते भी हैं। नेमतों की कदर कीजिए। वो कहते हैं ना कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, आज इंसानों का ये मामला नेमतों के साथ है, और वल्लाही इल्म की नेमत से बड़ी कोई नेमत नहीं है, अच्छे साथियों की नेमत से बड़ी कोई नेमत नहीं है, पुरसकून माहौल की कोई नेमत नहीं है। आप देखिए कि जिन माहौल में मैं और आप इस वक्त दीन सीख सिखा सकते हैं, ये हमारे मुल्क वालों में को हो सकता है अभी तक भी सबको ना मुयस्सर हो, क्या मैं और आप इतनी प्यारी ज़िंदगी का हक अदा नहीं कर सकते? आपको कोई बुलाता है कि आप आइए सीखिए, आप कहते हैं ये तो हर वक्त ही मैसेज करती हैं, इनका तो काम ही ये है, कभी कोई जवाब में सोचे कि उसको मिलता क्या है, उसका क्या लालच है इसमें? आपको तक इसी स्कूल में हर हफ्ते क्लास होती है 2 दफ़ा, जुम्मे को और इतवार, इतवार और जुम्मे। अब आप इसको 3 दिन कर दें फिर देखिएगा सब आएंगे, ये इसलिए नहीं आते, नाराज़ हैं आपसे कि आप बहुत थोड़ा वक्त बुलाते हैं, ऐसे ही है ना हैं। अब आप देखिए कि बस जो मौके मिलते हैं ना उसकी कदर कीजिए। तो मैं जो बात बता रही थी कि पेरिस में इस साल हमारा दौरे कुरान हुआ, अल्लाह के हुक्म से होता है, फिर जो भी हमेशा की तरह तलब होती है, समर कोर्स हुआ और आप वहाँ, हमने नया कोर्स शुरू किया है बाकायदा। यकीन करें कि मुझे एक एक कदम पे मुझे आपके इस शहर के पहले शुरू के 2-3 महीने साल याद आते हैं। फितरी बात है, इंसान हम कोई सालगिरह मनाए ना मनाए, लेकिन उस जब वो दिन आता है तो हमारी तवज्जो जाती है, शादी की एनिवर्सरी करें ना करें लेकिन याद आ जाए तो यादों से हमारा दिल नहीं टूटता नहीं थकता। वो वक्त याद करें ज़रा जब सामान की गठड़ियाँ बांध बांध के इधर से उधर फिरते थे हम, कि कोई ज़मीन का टुकड़ा हमें मिल जाए और हम जगह छुपा लें, सर सर छुपा लें। और शुरू में थोड़ी सी भी चीज़ मिलती है बहुत ज़्यादा लगती है। हमने जहाँ पहली पहला वीक क्लास का किया, ये लगा लीजिए ये जितनी पे आप सारे बैठे हैं ना, इतना को कमरा मिला हमें पहला, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन पहला वीक हमने जिस जगह किया कि आप कह लीजिए कि बंदे पे बंदे को बैठाने की भी जगह नहीं रही, अब क्या करें, यानी वो क्लासरूम पूरा भर गया, अब क्या करें। थर्सडे थी और कई इश्यूज खड़े हो जाते हैं, या तो फिर रोक लें अभी क्लासें या कुछ और करें, फिर एक एमरजेंसी जगह चूज़ कर करा के वीकेंड पे, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन में, यकीन करें कह रहे हैं कि जिस तरह आपके यहाँ एक गोदाम को आप क्या कहते हैं शेलर, पूरा खाली करना पड़े सामान से भरे को और उसको उठाना इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके ऐसे जोश और ऐसे जज्बे से उन लोगों ने किया। मैं चली गई ज्यूरिख और ये साथी लग गए कामों में, क्यों कि हमें जगह चाहिए। और आपको पता है कि क्या हुआ, उनको लगता है कि हमें महल मिल गया क्योंकि वो पहले से बड़ी है, लेकिन ये भी छोटी है। अपने जज्बे ना कभी मरने दें। आप माशाल्लाह देखिए कि जब ब्यारके का ये स्कूल जो है, मैं अगर गलती करूं तो आप मुझे बता सकते हैं, ये हमारे पास मौजूद है ना जगह। आप में से इस वक्त यहाँ ब्यार इस इलाके के करीब से कितने लोग आए वो हैंड रेस करें, ज़रा से थोड़ा सा ऊपर प्लीज। माशाल्लाह सच बताएं, क्या ये स्कूल आपके लिए एक नेमत नहीं है, है कि नहीं? मैंने फ्रांस वालों को बताई थी ये बात कि नॉर्वे में तो हमें स्कूल्स मिल जाते हैं, कहते यहाँ कोई नहीं देता। यकीन करें मुझे जितना आपकी गवर्नमेंट पे प्यार आता है, मैं कहती हूँ कि आपको तो इसका अंदाज़ा अभी नहीं है क्योंकि आप इधर ही बैठे हुए हैं। जी आप आपको ये मिला हुआ है, और मैं आज आप सबको कह के जाऊंगी कि मेरी ज़िंदगी का एक ये भी ख्वाब है कि स्कूल में अल्लाह का कलाम आए। वो आपको दे रहे हैं, आपके पास है, आप उठिए काम कीजिए। आप इसी इलाके के लोग उठें, आप इधर कोशिश करें, शाम की क्लास करें, वीकेंड करें, क्या हमें और क्या चाहिए? यानी आप देखें कि ऐसी जगह अगर हम बनाने लगें तो शायद हमें 10 साल चाहिए होंगे ना, कितना पैसा जमा करें, कितने रिसोर्सेज, फिर भी अल्लाह की रहमत से ही होगा। तो आपको अल्लाह ने बनी बनाई जगह दी है, आप इसकी कदर करें, आप इसकी वैल्यू पहचानें। लाइन शकर तुम लाजीद अन्ना को, अगर तुम नेमतों की कदर करोगे बहुत मिलेगा, और वाला इन कफर तुम इन नाजा भी लशदीद। ये मेरे मैं सिर्फ आपको एहसास दिला रही हूँ, ये करना आपने ही और आप करते भी हैं। क्लास होती है इधर, जो साथियों को नहीं पता आज फर्स्ट टाइम आए हैं वो ज़रूर सुने, लेकिन याद रखिए कि ये ज़िंदगी जा रही है। कब्र में जब लोग हमें डालेंगे ना उस वक़्त हसरत होगी। हदीस में आता है कि कब्र में जब मुनकर नकीर आएंगे और सवाल करेंगे मन रब्बू का मा दीनू का मन रसूलू का, तो लोग क्या कहेंगे, लादरी आई डोंट नो। और एक रिवायत के लफ्ज़ मौजूद हैं, काश मैं लिखता और पढ़ता। और आप सूरत मुल्क की तिलावत करके रात को सोते होंगे ना, एक सवाल जहन्नमियों में अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? क्या कहेंगे, कालू बला आया था, बट हम ही जुटलाते रहे, नहीं ये हम नहीं, ये फ़िरका वारियत है, ये इनका मसलक ठीक नहीं। तुम नसीब में अपने याद रखो कि यही रखोगे, क़्यामत के दिन हसरत होगी। अगर मैं सिर्फ नॉर्वे में बैठी होती ना, यानी यहीं रहती, तो मेरा बिल्कुल एंगल फ़र्क होता सोच का, मैं बहुत खुश होती कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब मैं बाहर जाती हूँ, अल्लाह ही लेके जाता है, मैं जो बाहर की भूख देखती हूँ आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। मुझे ऐसे लगता है कि कोई भूखे है और हम रोटी रख के बैठे हैं और उसको नहीं दे रहे। ये नेमतों की कदर करें। आपके साथ ही है स्वीडन, डेनमार्क भी आपके साथ ही है। सिर्फ एक दर्स के लिए कई महीनों से लोग कोशिशें करते हैं, फिर कभी होती है, कभी आगे कभी पीछे। ये पौधे होते हैं, मिट्टी होती है, जहाँ की ज़रखेज़ होती है वहाँ पौधा लग जाता है। और मैं ये बात बताऊँ कि आपकी इस मिट्टी में बरकत बहुत है, ज़रखेज़ी बहुत है। ये बस अल्लाह को पता है जो बातें मैं कह रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन अगर आप ढीले हो जाते हैं, और आपने अगर ढीले हो के कहना है कि जी हो गया ना, अब कर लिया ना जो करना है, तो 5-6 साल की खेल है, हम भी सब इधर उधर हो जाएंगे। पहले इस मकसद का यकीन तो रखें कि हम ये कर सकते हैं। मेरी जॉब है अहम, पर ये मेरी ज़िंदगी नहीं है। देखिए ना, जॉब से भी तो लोग मर जाते हैं, जॉब पे गए गए जान चली गई। मुझे अभी किसी एक सिस्टर की दुआ के लिए कहा इन्होंने, पता नहीं किस शहर में थी, ये इसी लास्ट मंथ की बात है, बच्ची फुल मेडिकल स्टूडेंट, 5 साल पूरे हो गए, अब हॉस्ट जॉब शुरू होनी थी, और एकदम चक्कर आया कहीं बाहर गए हैं, कुछ इधर की बात भी होगी।
इधर की जो वर्कर कर रही हैं तो वो साइकिल पे जा रही थी, तो उधर थी शेखिया शायद,
इधर भी हो सकता है। यानी ऐसे वाकयात कोई आम नहीं, खास बात नहीं है। अभी भी वो बच्ची होश में नहीं है, 5 साल माँ बाप ने पढ़ाया। और एक किसी अपने बच्चे का कोई बता रहा था, 13 लाख रुपए पाकिस्तान के एक साल की उसकी फीस है, इधर पेरेंट्स दे रहे हैं, बच्चा बाहर से आया हुआ है, पाकिस्तान से इधर बाहर, इधर से मेरा कहीं भी यूरोप में, मैं ये कोई खबरें नहीं सुना रही होती, मैं तो बस आपको इबरत के लिए बता रही हूँ ना, सिर्फ नसीहत ले लें। 13 लाख रुपए पाकिस्तान में एक मुतवसत फैमिली का बच्चा पढ़ने बाहर आता है। आपको नहीं पता 5 साल पढ़ने के बाद उसके नसीब में उससे उतना भी कमाना है कि नहीं। अल्लाह सब की हिफाजत करे, अल्लाह कभी किसी को औलाद का गम ना दिखाए। लेकिन याद रखिए, मैं आखिर में जो बातें करके ख़त्म करती हूँ, मौजू तो और भी बहुत चल सकते हैं, लेकिन आपकी मेरी ज़िंदगी अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है, अल्लाह का इनाम है। आप देखिए कि आप और मैं अगर इस ज़िंदगी में अपने और अपने बच्चों को साथ लेकर इस इल्म के तोहफे से महरूम कर देंगे और अल्लाह की मार्फत अल्लाह की मोहब्बत, तो नुकसान क्या होगा। किसी ने एक कोटेशन दी, अच्छी लगी, अगर औलाद को तोहफा ना दो, यानी बच्चा कुछ मांग रहा है आप नहीं देते, कुछ देर रोएगा फिर सो जाएगा, ऐसे ही है ना, चॉकलेट ही मांग रहा है, नहीं दिया आपने, दुनिया का इल्म नहीं दोगे, स्कूलों में बच्चों को ना भेजें और घर में रख लें, फिर क्या होगा बताइए। दुनिया ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी बकौल हमारे, कि बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे तो ख़राब हो जाएगी उनकी दुनिया, और अगर दीन ना मिला तो आखिरत की करोड़ों साल बाद ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ये गाड़ी है किसी की, आप में से पहचान लें, 93820, इसको हटाना होगा।
कुछ लोग आए हैं वो कह रहे कि हटाएं गाड़ी,
कर दे, किया है, किया अपनी ही होनी है, ठीक है कर देते हैं जी, जज़ाकअल्लाह खैर। तो सारी बात का खुलासा ये है कि अपनी इस ज़िंदगी से कुछ ले लीजिए, गेट मोर फ्रॉम लाइफ। वो क्या ज़िंदगी है जो खा पी के गुजर गई, पैन ओढ़ के गुजर गई। और यकीन कीजिए कि आप जब अल्लाह की मर्ज़ी के बनते हैं तो अल्लाह ताला आपसे कुछ भी नहीं लेता, बल्कि आपको और ही दे देता। तो आपको मुझे इस नए साल के आगाज़ में ये नियत करनी है कि मैंने अपने बच्चों की ज़िंदगी को संवारना है, और इसके लिए करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। अलिफ बात आपने सिखाई थी, ABC आपने सिखाई थी, सुबह रोते बच्चे को बारने हागे में आप ही छोड़ने गई थी, पहले दिन 2-3 दिन आप ही उसके साथ बैठी थी। आपको इस दीन के लिए भी कोशिश करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको खुद जुड़ना पड़ेगा। हमसे लोग कहते हैं बारने हागे कब बनेगा, बारने हागे कब बनेगा, तो वो बारन तो बच्चे को कहते, बड़े को क्या कहते हैं बोले, हैं वो तो बना हुआ है, पहले उसको तो भरें, क्या बोलें, क्या बारने आगे का ऑपोजिट, बाहर वाले भी कहेंगे। अच्छा मैं बाहर जाऊँ तो बड़ी अच्छी नॉर्वेजियन बोलती हूँ, क्योंकि वहाँ मेरी को जान मेरी किसी को समझ ही नहीं आती। तो जो बाहर से सुन रहे हैं, बान कहते हैं बच्चे को, हागे कहते हैं बाघ को, ऐसी है ना, गार्डन को। तो बड़ों का स्कूल तो खुला हुआ है ना, पहले आप उसको भरें, आप हर क्लास को भरें, आप हर कोने पे जाएं, आप देखिएगा आप सारे एक चलता फिरता पढ़ने आगे होंगे। ये जो माएँ तैयार होती हैं ना, यही टीचर्स होती हैं। इन्होंने आप सोचते हैं कि एक पढ़ने आगे बन गया तो बस देखना फिर तो बच्चे हमारे माशाल्लाह आलिम फाजिल, नहीं, आपने चलाना है उसको, आपने बनना है। तो आज एक शौक़ के साथ उठें, इधर से एक इरादा लेकर उठें, कल नहीं मंडे, मंडे है ना, अभी तो 2 दिन है बीच में, मंडे से सूरत यूसुफ शुरू हो रही है हमारे पास स्कूल में, है उसके कोई फ्लायर इधर दिखाइए। एक देखिए सारे कुरान बड़ा खूबसूरत है, मैं रोज़ सब सुबह पढ़ाने आती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि जो कुर्सियाँ खाली हैं ये खाली क्यों हैं, इस पर बैठने वाले इधर कहाँ हैं इस वक्त, या सो रहे हैं या जॉब पे, या पढ़ रहे हैं, या फिर कुछ कहीं और पढ़ने गए। मैं कहीं और पढ़ने गए तो ठीक है, ठीक चीज़ पढ़ रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे आप वेलकम है। किसी को किसी किस्म की ये ज़रूरत नहीं है कि आप ज़रूर कोई रजिस्ट्रेशन करें, हमारी कोई क्लास इस लेवल की नहीं है कि आप उसमें दाखिल नहीं हो सकते। जैसे नॉर्वेजियन स्कूल हैं, आप लैंग्वेज सीखते हैं तो आप दाखिला लेते हैं फिर ही जाते हैं ना, जैसे यहाँ के कोर्सेज का रिवाज है। हमारे स्कूल में कहीं भी कोई कोर्स है, इवन इस जगह पे जो हो रहा है, कोई शर्त नहीं है कि आप दाखिला लें, दाखिला लेंगे तो हमें काम डालते हैं, फिर हमने आपका सबक भी सुनना है, आपके ग्रुप लेने हैं देने हैं, वो एक अच्छी बात है। अगर आप आगे बाकी दूसरों को सिखाना चाहते हैं फिर तो आप ज़रूर दाखिला लें, लेकिन अगर सिर्फ आप अपने लिए करना चाहते हैं आप आइए बैठिए सुन के चले जाएँ, और आप इस माहौल में बैठ के जो सुनते हैं ना, ये बाहर चलते फिरते, या आप कह लीजिए कि आप बाद में सुन लें, यही रिकॉर्डिंग अभी जो आपने सुनी है बात की, ये रिकॉर्डिंग बाद में आप सुनेंगे तो आपको अपनी नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ बैठ के आपको लगता होगा कि ये हमारे दिल की बात है। ठीक है, तो ये फ्लायर है, आप लोग बाहर से ले लीजिए, जिसको भी आगे देना चाहें पास करें। तो मंडे से ये जो रिकोवाइन पे स्कूल है, जगह कितने बजे? 10 से 12:30 का टाइम है। आपका जब भी दिल करे ना आप उठ के आ जाएं, और जितनी देर बैठ सकते हैं बैठ के देखें। सूरह यूसुफ क्या सिखाती है, कोई बताएगा आप में से? सब्र।
कि बुरा कोई सोचे यार अल्लाह ना चाहे तो नहीं हो सकता।
चलिए, अल्लाह अच्छा करना चाहे तो ठीक है, बिल्कुल। और तो फिर आप लोगों को तो ज़रूरत ही नहीं पढ़ने की। यकीन करें हर दफ़ा इसमें से नए मोती निकलते हैं। तो आप लोग आइए, और अगर फिर आपका दिल चाहेगा तो आप इस सिलसिले को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और कोई बात कोई पूछ लीजिए, 10 मिनट है हमारे पास। कोई चीज़, जो भी सवाल जवाब, कोई मशवरा, कुछ भी दे दें। कोई शिकवा ही कर लेंगे, लाई कर लें, कोई शिकायत लगा दें। ख़ास तौर पर यहाँ कुछ बच्चियाँ भी बैठी वानी, इधर आओ। आप में से कोई बच्ची ऐसी जिनको मेरी उर्दू ना समझ आई हो, हाथ खड़े करें। समझ आ रही थी बेटा? वानिया, जो बातें भी मैंने की है ना, आप नोश में ट्रांसलेट करो। शाबाश, जो जो आपने सीखा अपने लफ्ज़ों में सुनाओ इनको। इधर मेरे इधर करीब आ जाओ, और अपना भी बताएं आप क्या पढ़ रही हैं क्लास में।
नूर कुरान पढ़ो, लैल कुरान पढ़ो, मश्क तफसीर और तर्जमा के साथ। जी आज जो सीखेंगे वो यही था कि कैम को कैसे ड्रू करना है, कि खास सबूत थी।
बस इतने सीखे हैं। ठीक है, फिर और कोई बात? जी शनासी, आप कुछ करना चाहते हैं? ये दिखा दें, स्लाइड्स कुछ हैं। अगर आप लोग, आप में से कोई साथी ये चाहते हैं कि हम आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर लें, वो लोग हाथ खड़ा करें। जो किसी भी ग्रुप में नहीं है जिसमें बकायदा आपको कोई स्केड्यूल के साथ मैसेज आता, वो हैंड रेज करें। वैसे तो मुझे पता है कि हर बंदे के पास बीसियों ग्रुप्स हैं, लेकिन वो किसी में रेसिपीज शेयर होती हैं तो किसी में कुछ, लेकिन बाकायदा तौर पे इस तरीके से कि आपको एक तरतीब के साथ मैसेज दिया जाता है, उसमें सारा दिन चीज़ें नहीं आती। जी आप बताइए।
आपका मेरे पास है, और आपको एक बस मेरा दिल किया बताने का कि मेरे घर वाले पता क्या कहते हैं, कि हमें लगता है कि आप हमारे साथ रहती हैं, इसलिए कि मैं हर वक्त आपके सुनती
सुनती
रहती हूँ।
तो प्लीज हर वक्त ना सुना करें, चिढ़ हो जाएगी घर वालों को।
नहीं, जब मैं अकेली, असल में अकेली होती हूँ तो लगाया होता है ना, तो जब वो ऊपर से आते हैं तो कहते हैं कैसे लगता है कि ये जो है आपका मतलब वजीफत जो है ये इधर हमारे घर में हमारे साथ।
मैं ये जब बाहर जाती हूँ ना दूसरे शहरों में, कभी आप बच्चों का एक्साइटमेंट देखा करें, कोई खिड़की से झांक रहा है, कोई इधर से, कोई इधर से, कहते हैं उस्ताज़ा आंटी। बच्चे बहुत केयरिंग होते हैं ना माशाल्लाह। तो आप देखिए कि आपके घरों में जब चलती है चीज़, तो कुछ ना कुछ तो दूसरों के भी कानों में पड़ता ही है ना। यहाँ तो आप साथ नहीं ला सकते, तो आप लोग अपने नाम दे सकते हैं और उसको व्हाट्सएप में ऐड कर लें। उस अस्मा को ना दीजिएगा, ये तो आपको बड़े मैसेज करेंगी, लेकिन यही है जो आपको माशाल्लाह बकायदा रखेंगे भी। इनके पास भी कई ग्रुप हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ऐड किया जाए तो नंबर दे सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर आप लोग ख़ुद भी आ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। और ये जो स्लाइड्स आपको अभी दिखाते हैं, तो ये भी फिर आपको ग्रुप में भेजेंगे जाएंगी। बेसिकली इसमें जो मुहर्रम के नाते से जो डिफरेंट थिंग मैंने इकट्ठी की हैं, लेकिन उसका खुलासा है। तो अगर अभी भी देख सकेंगे, नहीं तो मैं अब दुआ कराती हूँ इसके प्ले होने तक, और उसके बाद ये कि आप लोगों को ग्रुप में भी भेज देंगे ये चीज़ें। ठीक है, और कोई अनाउंसमेंट, कोई बात कुछ? इधर कौन सी, इस इधर कौन सी सूरत चल रही है आपकी? फायदा इबादुर्रहमान पूरी हो गई है या अभी आनी है वो आयतें? कौन कौन आप में से इस क्लास में आता है वो हैंड रेस करें। हाथ इतने छोटे क्यों उठते हैं? जी ठीक है, तो आप में से जो लोग इधर, आप में से कौन है जो इधर आ सकते हैं, मतलब वो सोच रहे हैं कि हम इधर आएंगे, वो हैंड रेस करें। ठीक है, और ये भी याद रखिए कि दूरी करीबी कोई भी नहीं चीज़ होती, जहाँ सहूलत है वहाँ चले जाएँ, मुख्तलिफ औकात मुख्तलिफ चीज़ें। जी आप फैज़ा, आपको भी मेरी जान अल्लाह ही लाता है, सही اچھی بات ہے، کوئی نہیں آ سکتا جب تک اللہ طاقت نہ دے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والا سال ہماری زندگی کا بہترین سال بنا دے، اور 9 یا 10 یا 10 یا 11 کو روزہ رکھ لیجئے گا، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو آئیے چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجھک وعظیم سلطانک، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا، اللہم الہمنی رشدی وعزنی من شر نفسی، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک، یا قدوس، ہماری زندگی میں برکت دے دے، یا اللہ ہمارے اوقات میں برکت دے دے، یا اللہ ہمیں اس مختصر سی زندگی میں کوئی بڑا کام کر کے جانے والا بنا، یا اللہ ہمارے جانے کے بعد ہمارا ذکر خیر رکھنا، یا اللہ ہمیں دوسروں کے نفع کا بنا دے، یا اللہ آنے والے ہر سال، دن، مہینے کو ہمارے لیے خیر اور عافیت کا بنا دے۔ اے اللہ، ہم سب کو توفیق دے کہ اپنی زندگی کے مسائل سے نکل کر یا اللہ ایک بہت بڑے مسئلے اور مسئلہ آخرت کی تیاری کر سکیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرن کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين۔ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ یا اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور تو جب چاہتا ہے غم کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے کاموں کو آسانیوں میں بدل دے، یا اللہ مشکلات کا حل دے دے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی فرما۔ یا اللہ، جو چیز ہمارے دین دنیا کے معاملے میں بہتر ہے، یا اللہ ہمیں اسی کی طرف مائل کر دے۔ یا اللہ، ہماری فکریں دور کر دے، یا اللہ ہمارے غم ہلکے کر دے، یا اللہ سختیوں سے نکال دے، یا اللہ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کی توفیق دے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ یا اللہ، تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یا اللہ، ایک آنکھ چھپکنے کے برابر بھی اس نفس کے حوالے نہ کرنا۔ یا اللہ، ہمارے سارے معاملہ درست فرما دے، تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو یہ کام کر سکے۔ اعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک شقائی وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ، تیری پناہ لیتے ہیں سخت مشقت سے، بد نصیبی کے پہنچنے سے، بری تقدیر سے، اور دشمنوں کی خوشی سے۔ یا اللہ، تو ہماری دنیا کو بھی آسان کر دے، اور ہماری قبر کے معاملوں کو بھی آسان کرنا، اور ہمارے برزخ کے مراحل سے گزار کر ہمیں حشر میں بھی آسانیوں میں ڈھال دینا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنت وفی الآخرۃ حسنت وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، جو ہمارے پیارے تیرے پاس چلے گئے ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ، ایمان کے ساتھ ان کی جو کی بھی نیکیاں تھیں ان کو قبول فرما۔ یا اللہ، ان کی بشری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ، ہمارے ماں باپ پہ اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی رحمت سے، یا اللہ تیری رحمت سے، یا اللہ ہم تیری دیوی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یا اللہ، اس محفل میں جو ساتھی موجود ہیں، جنہوں نے بلایا، جو آئے، جنہوں نے کوششیں کیں، یا اللہ ان کی اس نیکی کو قبول فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں ہماری نیکیوں کے بدلے اس دنیا میں بھی دیتا ہے، یا اللہ آخرت میں اجر سے محروم نہ کرنا۔ یا اللہ، جو بھی اپنی کسی گھریلو پریشانی میں، اس کو اس سے نکال دے، بچوں کی پریشانیوں سے نکال، شوہر بیوی کے دلوں میں محبت اور الفت ڈال دے۔ یا اللہ، شوہروں کو دین اور دنیا کے معاون بنا، اور یا اللہ، کبھی بھی کسی کو اس طرح سے ایک دوسرے سے جدا نہ کر کہ اس کو یقین نہ آ سکے۔ یا اللہ، توبہ کی توفیق دینا، موت کے وقت کلمہ نصیب کرنا۔ یا اللہ، سارے حق ادا کر کے بھیجنا۔ یا اللہ، کسی کا ایک پائی پہننے کا بوجھ ہمارے سر پہ نہ ہو جب دنیا سے جائیں۔ یا اللہ، ایک پینی بھی قرض کی ہمارے سر پہ نہ ہو۔ یا اللہ، ہمیں قرضوں کے بوجھ سے آزاد زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ، हमें ज़िंदगी का मकसद समझ अगर आ गया तो फिर इसको पाने के लिए कोशिश करने वाला बना दे। और या अल्लाह जो साथी दिन रात इनको रास्तों में कोशिशें करते हैं, या अल्लाह तू उनको अपनी रहमत से नवाज़, या अल्लाह तू उनकी कदरदानी फरमा, या अल्लाह आज के इस दौर में बस हमारा नाम लिख दे कि हम इस कुफर और इल्हाद की आग को बुझाने वालों में थे, ना कि आग को भड़काने वालों में। या अल्लाह बाहर जो फितने हैं हमारी नस्लों को उनसे महफूज रखना। या अल्लाह अगर हमने उनको इल्म का नूर दिया तो वो अच्छे बुरे का फ़र्क जान लेंगे। या अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमा। जो भी कहना चाहता है और नहीं कह पा रहा उसको भी हमारी दुआओं में शामिल फरमा। और या अल्लाह एक बार फिर इस क्लास के साथियों के लिए भी दुआ करूँगी, या अल्लाह इनके कदमों को जमा दे। या अल्लाह अगर इनकी कोई छुट्टियाँ होती हैं तो या अल्लाह वो ख़त्म कर दे। या अल्लाह इनके उज़र दूर कर दे। या अल्लाह कोई मसला कोई परेशानी आए ही ना इस वक्त में कि जो इनको इस किताब से दूर कर दे। और या अल्लाह हमारी ज़िंदगी को आसानियों वाली ज़िंदगी कर दे। और या अल्लाह हमारे उस्तादों पे अपनी रहमत फरमा। या अल्लाह हमें उनकी दुआएं लेने वाला बना। या अल्लाह हमें उनका दिल दुखाने वाला ना बना। या अल्लाह हमें अपने माँ बाप की कदर की तौफीक दे। और या अल्लाह हमें उनकी दुआएं लेने वाला बना। और या अल्लाह एक बार फिर दुआ करूँगी पूरी उम्मत को जोड़ दे। या अल्लाह आज मुसलमानों की जो हालत है ये हमारे ही आमाल की जजा है। या अल्लाह हमारे आमाल को संवार दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अश्हदु अल ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तूब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन आमीन। एक तो प्रोग्राम ये चल रहा, पहले तो ऑन था ना। आइए, दो प्रोग्राम हो रहे हैं कुछ। आप ताहिरा की इंफॉर्मेशन देना चाहें तो दे दीजिए। किस किस को घूमने फिरने का शौक़ है मेरे सिवा, हैं? एक ट्रिप लेकर जाना चाह रहे हैं ये लोग जो छुट्टियां आ रही हैं बच्चों की, तो ताहिरा आपको थोड़ी सी उसकी इंफॉर्मेशन दे देती हैं। अगर आप में से कोई है जाने में इंटरेस्टेड तो आज ही इनको बताना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत कम है बीच में। आप ताहिरा बता दें, चंद मिनट दीजिए हमें।
मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा।